त्रैलोक्य गुरु जाते जन्मे है धन्य सुमित्र पिता माता सोमा भी धन्य हुई जग में। राजगृही नगरी में जन्मे 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सूरतनाथ का पुण्य चरित्र आप सब श्रवण करेंगे, क्योंकि अयोध्या में मुनि सूरतनाथ भगवान का जिन मंदिर बन रहा है और उसमें विराजमान होने वाले भगवान मुनि सूरतनाथ की सुंदर प्रतिमा आ चुकी है, उनका पंचकल्याणक होने वाला है। उत्तर पुराण के अंदर आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी कहते हैं, निवृत्तौ व्रत शब्दार्थो यस्या भूत सर्व वस्तुसु देयान्न सव्रतम सस्य सुब्रतो मुनि सुब्रतः। कहते हैं जिनके नाम के साथ व्रत शब्द जुड़ा हुआ है, व्रत का अर्थ है जिन्हें समस्त वस्तुओं का पदार्थों का त्याग था और जो उत्तम व्रत के धारी थे, ऐसे श्री मुनि सूरत भगवान स्वयं व्रत के धारी हैं, हम सबको भी व्रत प्रदान करें। अर्थात भगवान मुनि सूरत के दर्शन से मन के अंदर हृदय के अंदर व्रतों को धारण करने की भावना आए, इस लक्ष्य को लेकर उन मुनि सूरतनाथ भगवान के पुण्य चरित्र को आप सबको श्रवण करना है। होता यह है कि मुनि सूरतनाथ भगवान के पूर्व के तृतीय भव से कथानक का शुभारंभ हुआ है, अर्थात हम सब मध्य लोक के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रहते हैं। जैसे हम आज अयोध्या नगरी के अंदर बैठे हुए हैं, इसी प्रकार से आप सब अपने अपने प्रांतों के अंदर, अपने जिले के, अपने नगरों में, अपने घरों के अंदर उपस्थित होकर के और मुनि सूरतनाथ का पुण्य चरित्र श्रवण कर रहे हैं। तो इसी भरत क्षेत्र के अंग देश के अंदर चंपापुर नाम की नगरी है, आज भी चंपापुर है, बिहार झारखंड के अंदर चंपापुर नगरी मानी जाती है। और चंपापुर नगरी एक ऐसी नगरी है जहां पर भगवान वासुपूज्य के पांचों कल्याणक हुए हैं। केवल एक ही भगवान है जिनके एक ही नगरी में पांचों कल्याणक हुए हैं, अन्यथा बहुत सारे तीर्थंकरों के अपने अपने जन्मभूमि में चार कल्याणक हुए, सम्मेध शिखर से वे मोक्ष गए, किन्हीं के दो कल्याणक तीन कल्याणक ही हुए हैं, अन्यत्र से ही केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया। लेकिन चंपापुर नगरी भगवान वासुपूज्य के ही पांचों कल्याणक से पवित्र आज भी है और लोग जब बिहार झारखंड में जाते हैं तो पंच तीर्थों की वंदना करते हैं, उसमें चंपापुर की भी वंदना करते हैं, जहां अभी 8-10 वर्ष पूर्व ही पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की पावन प्रेरणा से रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में हमारे विनोद जी सेठी ने 31 फुट के भगवान वासुपूज्य की प्रतिमा विराजमान की है, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी सोना देवी की बहुत ही इच्छा रहती थी, तो उनकी स्मृति में उन्होंने भगवान वासुपूज्य की विशाल प्रतिमा विराजमान करने का पंच कल्याण कराने का पुण्य लाभ प्राप्त किया। उस चंपापुर नगरी का वर्तमान मैंने परिचय दिया, ऐसी उस चंपापुर नगरी के अंदर चतुर्थ काल में राजा हरिवर्मा राज्य करते थे। हर नगरी के अंदर पहले राजतंत्र ही होता था और वहां के राजा अपनी रानी के साथ, अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करते थे तो राजा हरिवर्मा राज्य कर रहे थे और अपनी प्रजा का खूब अच्छे से पालन कर रहे थे। अच्छे अच्छे कार्य उनके नगरी में चलते थे, रोजाना राजसभा चलती थी, सबके दुख सुख सुने जाते थे, राजा उनका निराकरण करते थे, समाधान करते थे, सबको संतुष्ट रखते थे। तो राज नर्तकी उस राजसभा के अंदर नृत्य कर रही है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, अर्थात सब आनंद मग्न है। और एक दिन उस नगरी के राज उद्यान का माली आकर के संदेश देता है, राजन आज हमारे चंपापुर नगरी के उद्यान में अनंत वीर नाम के निर्दंत मुनिराज पधारे हैं। महाराज आज पूरा बगीचा पूरा उद्यान महक उठा है। जैसे ही राजा को यह शुभ संदेश मिलता है, वे उद्यान के माली को तुरंत भेंट देकर विदा करते हैं कि आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है। और राजा अपनी राजसभा के अंदर घोषणा करते हैं, हम सब महाराज के दर्शन करने चलेंगे। कितना हमारा पुण्य है कि अनंत वीर नाम के निर्ग्रंथ मुनिराज हमारी नगरी में पधारे हैं, हमारे उद्यान में विराजमान हैं। जब लोग अनंत वीर महामुनिराज की जय, ऐसे मुनिराज की वंदना करने की इच्छा से राजा हरिवर्मा अपने संपूर्ण परिवार के साथ, रानी के साथ, प्रजा के साथ मुनिवर की वंदना करने के लिए जाते हैं। देखो उद्यान के अंदर मुनिराज संघ के साथ विराजमान हैं, राजा उनकी वंदना कर रहे हैं, रानी भी झुककर गुरु के चरणों में नमन कर रही हैं, प्रजा के लोग भी राजा रानी के साथ वहां पहुंचे हैं और गुरुओं के दर्शन करके आप इच्छुक हैं कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ प्राप्त होगा, मिलेगा। तो जब राजा मुनिराज के पास जाते हैं तो मुनियों की वंदना करने का प्राचीन नियम रहा है, तीन प्रदक्षिणे देसीर नायो कर पूजा तुति किनी साधु समीपे वीन कर बैठे चरणनी में दीठी दीनी। समझे क्या? मुनिवर की वंदना बड़े पुण्य से मिलती है। अरे ऐसे गुरुओं की वंदना का जो पुण्य है उसके लिए तो समंत भद्राचार्य ने कहा कि उच्चैर गोत्रम प्रणतीर भोगो दानाद उपासनाद पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनाद कीर्तिषु तपोनिधिषु। हे भव्यात्माओं, अगर उच्च गोत्र का बंद करना है तो प्रणतीर गुरुओं के चरणों में प्रणाम करो, नमन करो, विनय पूर्वक उनके चरण स्पर्श करो और भोगो दानात उन्हें दान देंगे अर्थात आहार देंगे तो भोगों की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छे अच्छे भोग सामग्री आपको प्राप्त होगी, उपासना पूजा और उनकी उपासना करेंगे तो आपकी पूजा होने लगेगी, माने आपकी कीर्ति फैलेगी, भगवान के साथ साथ गुरुओं की पूजा का भी विधान प्रारंभ से ही रहा। अनादिकाल से इस धरती पर देव सास और गुरुओं की पूजा स्तुति वंदना ये सब करने का विधान रहा है। तो उन गुरुओं के लिए कहा कि उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है नमन करने से, उच्च कुल में जन्म लेंगे। देखो एक मेढक ने महावीर भगवान के पास जाने का केवल संकल्प किया, बीच में मर गया, उच्च गोत्र का कैसा आश्रय हुआ कि वो देवता बन गया। छोटा सा मेढक भी दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है, उपासना करने से पूजा प्रतिष्ठा मिलती है, भक्ति सुंदर रूपम और भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, स्तवनात कीर्तिषु उनका स्तवन करने से अपनी कीर्ति में चार चांद लग जाते हैं, तपोनिधिषु ऐसे तपोनिधियों की निरंत दिगंबर मुनिराज जो इस पंचम काल के अंदर दिखते हैं कम से कम ये समझो कि अपना बहुत बड़ा पुण्य है। जब आज मिथ्यात्व के काली काले बादल छाए हुए हैं, ऐसे समय के अंदर भी हमें त्याग संयम व्रत को धारण करने वाले निर्ग्रंत मुनि अगर मिल जाएं, तो समझो कि बहुत बड़ा पुण्य है। हाथ तंते क्वचित क्वचित, कहा है कि समझो कि बड़े खेद की बात है कि कहीं कहीं जैसे जुगनू चमक जाते हैं तो लगता उजाला हो गया, ऐसे जुगनू के समान चमकने वाले आज जो संत हैं, उनकी हमेशा विनय करो, उनके अविनय करने मात्र से भी नीच गोत्र का आश्रय हो जाता है और न जाने कितने कितने कष्टों की प्राप्ति हो जाती है। तो राजा उन गुरु के चरणों में नमन कर रहे हैं, और गुरु क्या है, अकारण बंधु होते हैं, तो उनके लिए क्या कहते हैं, मुनि सूरज कथनी किरणावली देख भरम बुद्धि भागे। मुनि को सूरज की उपमा दी है और उनके वचनों से जो अमृत छर रहा है वो सूर्य की किरणावली की तरह से होता है, और उस उन अमृत वचनों को सुन करके भरम बुद्धि भागे, मन के अंदर जो संशय जो भ्रम रहता है वो सब भाग जाता है, यानी मन में बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं, मिथ्यात्व भाग जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। ऐसे मुनिराज के दर्शन देखो कितने विनय से राजा रानी कर रहे हैं। पुनः दर्शन करने के बाद गुरुदेव से निवेदन करते हैं, गुरुदेव आप यहाँ पधारे, आपका रत्नत्रय कुशल तो है ना, हम सबके कल्याण का कुछ उपदेश दीजिए। तब मुनिराज कहते हैं, मुनिराज क्या कहते हैं, हे भव्यात्मन, ये जीव संसारी और मुक्त के भेद से दो प्रकार का है, यानी संसार के अंदर मुख्य रूप से दो द्रव्य हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य के दो भेद हैं, संसारी और मुक्त। संसारी संसरणम करोति इति संसारी, और सर्व कर्म क्षयान मुक्ति ही। जो संसार में संसरण करते हैं वे संसारी कहलाते हैं। एक इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक के जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और जो कर्मों से छूट जाते हैं वो मुक्त कहलाते हैं। तो गुरु का कर्तव्य है कि आए हुए भव प्राणी को उपदेश देना, ऐसा उपदेश देना कि संसार के दुखों से वो डर जाए। बल्कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर तो गुरुओं के लिए कहा है कि यो यति धर्म मकथयन नुपदिशति गृहस्थ धर्म मल्पमति तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रह स्थानम। बहुत ध्यान से सुनना क्या कहते हैं अमृत चंद्र सूरी, कि यदि कोई भव्यात्मा गुरु के पास गया है और वह मुनि धर्म को उत्कृष्ट रूप से जो प्रवचन करना चाहिए, यदि उसका उपदेश ना करके पहले उसे गृहस्थ धर्म का उपदेश देने लगते हैं, तो प्रदर्शितम निग्रह स्थानम, वे प्रायश्चित के भागी हैं, वे दोष के भागी हैं। आप कहेंगे ये क्या बात है, गृहस्थ को गृहस्थ धर्म का उपदेश दे, नहीं। जैसे किसी दुकान पर, किसी जौहरी की दुकान पर कोई जाता है तो उसे ग्राहक को वह जौहरी पहले बड़ा कीमती रत्न दिखाता है, क्योंकि जौहरी की दुकान पर वही जाएगा जो रत्नों को खरीदने का इच्छुक होगा। जब वो करोड़ों रुपए की चीज दिखाता है कि देखो ये हीरा इतना कीमती है, ये माणिक इतना कीमती है, ये मोती इतना कीमती है, हमने एक जौहरी जी से पूछा, एक माणिक एक रत्ती का था, बोले माता जी 20 लाख रुपए का हम बेचते हैं बाजार के अंदर, एक रत्ती का एक माणिक रत्न 20 लाख रुपए का। तो जब इतने महंगे रत्न को देखकर कोई अपनी असमर्थता व्यक्त करता है, नहीं भाई जौहरी जी ऐसा है कि हमारा इतना बजट नहीं है, आप हमें इससे हल्की वाली चीज दिखाइए, तब उसे हल्का माल दिखाया जाता है, जो उसके बजट में होता है वो ले लेता है। इसी प्रकार से संतों का कर्तव्य है कि एक जौहरी की तरह से पहले मुनि धर्म रूपी कीमती रत्न की बात करें। उसके बाद जब वो भव्यात्मा अपनी असमर्थता व्यक्त करता है, महाराज मैं तो संसार में भटकता प्राणी हूँ, संसारी हूँ, गृहस्थ मेरे साथ में है, गृहस्थी मेरे साथ में है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे तो ऐसी बात बताइए कि गृहस्थ में रह करके भी मैं अपने अपने गृहस्थी को भी चला सकूं, पुण्य भी कर सकूं, आप जैसों की संगति भी करता रहूं। तब जाकर के मुनिराज उन्हें गृहस्थ धर्म की बात बताते हैं। इसलिए सबसे पहले कहा कि गुरुओं का कर्तव्य है कि आने वाले भव्यात्मा को पहले ऊंची बात बताएं। हो सकता है कोई जौहरी के पास जाने वाला 20 लाख रुपए की रत्ती वाला माणिक लेने वाला ही हो, तो उसे पहले अगर हल्की वस्तु दिखाएंगे तो घाटे में रहेंगे। ऐसे ही हो सकता है कोई भव्यात्मा मुनि दीक्षा के लिए आया हो, उसे अगर पहले से ही केवल छोटी छोटी बातें बताने लगेंगे तो उसी में सीमित रह जाएगा। इसलिए संतों के लिए कहा, जो अनंत वीर मुनिराज चंपापुर नगरी के उद्यान में पधारे थे, वे राजा हरिवर्मा के निवेदन पर उन्हें जीव की परिभाषा बताते हैं। हे भव्यात्मन, जीव दो प्रकार का है, संसारी और मुक्त। आप संसारी हैं, हम भी संसारी हैं, हम कर्म बंधन से मुक्त होने के प्रयास की ओर अग्रसर हैं। आपको भी वही प्रयास करना चाहिए। तो महाराज क्या करें? महाराज ने राजा के आग्रह पर, उनके निवेदन पर उपदेश दिया, उपदेश देते हैं महाराज, और उन्हें कई प्रकार से बताते हैं कि देखो जो कर्मों से युक्त होते हैं वे संसारी हैं, और वो कर्म कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 भेद हैं और इनके भेद आगे करते हैं तो 148 भेद होता हो जाते हैं, और उससे आगे भेद करते हैं भावों के अनुसार तो नाना जीवों की अपेक्षा, नाना भावों की अपेक्षा असंख्य भेद हो जाते हैं कर्म के। और क्या बताया उन्होंने? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। हे भव्यात्मन, ऐसे बंध 4 प्रकार का होता है। हम सब मिलकर के उनका बंद कर रहे हैं। कभी ज्ञानावरण कर्म का बंद करने लगते हैं, ज्ञान नहीं होने पाता, या हम किसी के ज्ञान में बाधक बन जाते हैं तो ज्ञानावरण कर्म। ये प्रकृति है, जिसका जो स्वभाव है वह कर्म वैसे निमित्त मिलने पर बंधने लगता है। तो ये सब कर्मों की बात बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो बंध के बंध चार प्रकार से होता है। कैसे होता है? तो कहा मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। देखो उत्तर पुराण है ये, और गुणभद्र आचार्य ने इसे लिखा है। उन्होंने कहा मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। यही बात गौतम गंडर स्वामी ने कहा। 54 पच्चयाणम, 4 प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय माने बंध के कारण होते हैं। ऐसे ही आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी कहा है, और धवलाकार षटखंडागम के अंदर भी कहा गया। कुंद कुंद आचार्य ने भी 4 बंधस्य कत्तारो कहा, 4 बंध के करने वाले होते हैं, प्रत्यय होते हैं। और केवल उमा स्वामी आचार्य ने मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतवः बंध के 5 कारण कहे। स्वाध्याय किया है ना आपने? बंध के 5 कारण केवल आचार्य उमा स्वामी ने कहा है, बाकी गौतम गणधर की वाणी के अनुसार सभी आचार्यों ने बंध के 4 कारण कहे, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। प्रमाद को उन्होंने नहीं लिया है, प्रमाद को कषाय के अंदर ही हो सकता है गर्भित किया हो, लेकिन उमा स्वामी आचार्य ने बंध के 4-5 कारण कहे हैं। और उनकी सारे टीकाकारों ने, चाहे वो सर्वार्थ सिद्धि हो, चाहे तत्वार्थ वृत्ति हो, चाहे तत्वार्थ राजवार्तिक हो, चाहे तत्वार्थ श्लोक वार्तिक हो, चाहे तत्वार्थ सार हो, उनके सूत्र की टीका में उन 5 बंध के कारणों को ही लेकर के और विशेषार्थ वगैरह दिए। तो गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? एक राजा को। राजा की योग्यता के अनुसार उपदेश चल रहा है। तो ये मैं आपको भगवान मुनीश्वरत नाथ के तीसरे भाव पहले की बात बता रही हूँ। ये पुण्य कथा आप श्रवण करते रहें। भगवान मुनीश्वरत नाथ हम सबको अच्छे अच्छे व्रतों को प्रदान करने में निमित्त बने, हमारे भाव बने कि हम अणुव्रत महाव्रतों को धारण करके अपने जीवन को अणुव्रती महाव्रती बनाएं। यही मुनीश्वरत नाथ भगवान की भक्ति करने का तात्पर्य है। इस कथानक को आप सुनते रहिए कि किस प्रकार से राजा के भाव आगे बढ़ते हैं और गुरुदेव का उपदेश सुन करके अब भी आगे क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। जब लोग मुनीश्वरत नाथ भगवान की जय।